तारीख 18 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार, कार्यक्रम है दिन भर। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर जनता ने डाले वोट।
को पर्सनालिटी में नहीं है, राहुल जी पे ऊपर नहीं, मोदी जी के ऊपर नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अच्छा है, बिकॉज वी हैव सीन 5 साल से उसको अपॉर्चुनिटी दिया।
ओडिशा में अपनी प्रचार शैली से सुर्खियां बटोर रहे बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा गरीबों के घर खाना खाते क्यों नजर आते हैं?
हम झोपड़ी में रहे हैं, पकाल भात हम खाए हैं। मैं लंदन से नहीं आया हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है, इसलिए इसको कृपया करके एलिस इन वंडरलैंड मत बोलिए।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुछ हथियारबंद लोगों ने 14 लोगों को बस से उतारा, गोली मार दी। कार्यक्रम में आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। देश में आज दूसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इनमें तमिलनाडु की सबसे अधिक 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं। पहले 97 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन तमिलनाडु की वेल्लोर और त्रिपुरा पूर्व सीट पर मतदान स्थगित कर दिए गए। चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण में 5:40 तक मतदान औसतन 61.12% रहा। उत्तर कोरिया ने अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को दोनों देशों के बीच परमाणु बातचीत से हटाने की मांग की है। प्योंगयांग में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि पोम्पियो बेहुदा बातचीत करते हैं और उनकी लापरवाही भरी टिप्पणियां खतरनाक परिस्थितियों तक ले जा सकती हैं। फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले तैयारियों के जायजे के लिए पोम्पियो की मुलाकात किम जोंग उन से हुई थी। इस सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हो पाया था। वहीं क्रेमलिन ने घोषणा की है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस महीने के आखिर में किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करना सबके हित में है। कोरियाई प्रायद्वीप में राजनीतिक समझौते की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण चरण में है। हम संबंधित पार्टियों को समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर से उत्तर कोरिया और अमेरिका को, ताकि वो बातचीत मजबूत करें, साथ काम करें और कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव कम हो और परमाणु हथियारों को नष्ट करने की दिशा में काम हो। ये उत्तर कोरिया, अमरीका समेत सभी के हित में है। ये थे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग के शब्द। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने राष्ट्रपति चुनाव में बुधवार को खुद की जीत की घोषणा की। उन्होंने अनौपचारिक परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें 55% वोट मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जीत पर कई राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी है। हालांकि उनके मुख्य विरोधी पूर्व सेनाध्यक्ष प्राबोवो सोबियांटो ने आरोप लगाया है कि चुनाव में धांधली हुई है और उनके आंकड़े दिखाते हैं कि वो विजेता है। पूरे परिणाम अगले महीने तक सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फेसबुक ने धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और संगठनों से जुड़े एक दर्जन पेज को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वालों की जगह नहीं है और ऐसे समूहों का समर्थन करने वालों को भी फेसबुक से हटा दिया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जैकब रीस-मॉग की हाल में काफी आलोचना हुई थी, जब उनके समर्थकों ने फेसबुक ग्रुप्स बनाए थे जिनमें आपत्तिजनक सामग्री मौजूद थी। उन्होंने फेसबुक की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ग्रुप में अधिकतर सदस्य नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे थे जो अपमानजनक बातें करते हैं और उनसे आपको निपटना चाहिए, लेकिन फेसबुक बीएनपी को प्रतिबंधित करने जा रहा है, ये ऐसी चीज है हम जिस पर सब सहमत हो सकते हैं। ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जैकब रीस-मॉग के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में बीते 2 हफ्तों में हुई झड़पों में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मारे गए अधिकतर लोगों में लड़ाके शामिल हैं, लेकिन इनमें 8 आम नागरिक भी शामिल हैं। दक्षिणी उपनगर में हुई झड़पों के बाद हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। लड़ाई तब शुरू हुई थी जब सेनाध्यक्ष खलीफा हफ्तार के भरोसेमंद सुरक्षा बलों ने शहर को कब्जा करने की कोशिश शुरू की। संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार से जुड़े लड़ाकों ने सुरक्षा बलों को पीछे धकेल दिया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत इडलिब के विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में सीरिया सरकार के सुरक्षा बलों के रॉकेट हमले में 10 नागरिकों की मौत हुई है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि मिसाइल एक गांव और विस्थापित लोगों के कैंप पर गिरा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com और रेडियो पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों के लिए आज वोटिंग हो गई। दूसरे चरण में तमिलनाडु में 38, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों के साथ ही असम, बिहार और ओडिशा में 5-5, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में 3 और जम्मू कश्मीर में 2-2 सीटों पर वोट डाले गए। इसके साथ ही मणिपुर और पुडुचेरी में भी 1 सीट के लिए मतदान हुआ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिव्या आर्य। दिव्या, सबसे पहले ये बताइए कि आज की मतदान प्रक्रिया की क्या खास बातें रहीं?
अभी भी चुनाव आयोग की जो प्रेस वार्ता होती है वो अभी चल रही है और मैं कुछ उसके अंश आपको बताती हूँ। जो चीज़ मेरे जहन में एकदम रह गई वो ये कि श्रीनगर में जो कि 2 आज सीटें वहाँ पे कश्मीर में थी, एक उधमपुर, एक श्रीनगर, श्रीनगर में महज 13.43% मान लीजिए 13% ही वोटिंग हुई है,
जो कि बहुत ही कम है,
उधमपुर में 66% हुई है। और बाकी देश में भी अगर आप देखें तो तमिलनाडु में 72, छत्तीसगढ़ में 71, पुडुचेरी में 78 और कर्नाटक में 71% वोट पड़े हैं। और ये संख्या अभी बढ़ेगी क्योंकि हमें बताया गया कि अभी भी लोग कतार में खड़े हैं। बिल्कुल, ये बताया गया कि पहले फेज में 69% वोट डले, जिसमें कि पुरुषों और औरतों की जो प्रतिशत था वो एक समान था, तो यानी कि इस बार औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो ये मैं ज़रूर आज बताना चाह रही थी। वैसे हम ये भी जानते हैं कि एक बुरी खबर उड़ीसा से आई, जहां पर एक पोलिंग अफसर की कार पर हमला हुआ और उस माओवादी हमले में उस पोलिंग ऑफिसर की मौत हो गई। ये भी हम जानते हैं कि तमिलनाडु की आज सभी सीटों पर वोटिंग थी, एक को छोड़ के वेल्लोर, जहां का चुनाव रद्द हुआ क्योंकि करोड़ों की धनराशि वहां प्राप्त हुई जब टैक्स ऑफिसर्स और चुनाव आयोग ने मिलकर वहां पर पिछले 2 दिनों में रेड की थी।
जी, वो महत्वपूर्ण हस्तियां कौन सी हैं जिनके भविष्य का फैसला आज वोटरों ने कर दिया?
तमिलनाडु से ही बात करें तो तमिलनाडु के शिवगंगा से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर पी चिदम्बरम 7 बार सांसद रह चुके हैं। पिछले आम चुनाव में कीर्ति यहां से चुनाव हार गए थे। बिहार के कटिहार से हाल ही में एनसीपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए तारिक अनवर मैदान में हैं। किशनगंज, जहां लगभग 67% मुस्लिम मतदाता हैं और ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, इसमें पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार की एक कड़ी टक्कर कांग्रेस को मिल रही है। अगर ओवैसी की पार्टी ये सीट जीत जाती है तो हैदराबाद के बाद के बाहर लोकसभा में ये उनकी पहली जीत होगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा से हेमा मालिनी, असम के सिलचर से कांग्रेस महिला सेल की अध्यक्ष सुष्मिता देव और कर्नाटक के मांड्या से पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते निखिल चुनाव लड़े हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से बात करेंगे। और कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने वोट डाले। इन 14 लोकसभा सीटों में सबसे महत्वपूर्ण है बेंगलुरु, जहां पर 3 संसदीय सीटें हैं और 1 ग्रामीण बेंगलोर की। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद कर्नाटक में मौजूद हैं और वो बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर जा पहुंचे।
मैं इस समय बेंगलुरु में हूँ और आज कर्नाटक की 28 सीटों में से 14 में मतदान सुबह शुरू हुआ और एक स्कूल में पोलिंग बूथ है जहां पर मैं कुछ लोगों के साथ हूं। कुछ लोगों ने वोट डाल दिए हैं और कुछ डालने जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जब वोट आपने डाला अभी तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि किसी मुद्दे पे आपने वोट डाला अपना या दिल अपने इमोशंस में डाला अपना?
नहीं, मेरे एकदम मेरे दिल से डाला हूँ वोट। जो
किस मुद्दे पे, क्या मुद्दा था इस बार चुनाव में?
मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी आएगी तो कुछ ना कुछ काम चलेगा, ये GST ये वगैरह वगैरह कुछ काम ही नहीं है, पूरे बगैर काम के सब ये हैं।
और आप बताइए, आप अभी वोट डालने जा रहे हैं ना?
हाँ, जाने रहा हूं।
अच्छा, तो इस बार चुनाव में कोई मुद्दा था?
हाँ, बहुत सा मुद्दा था ना। ये एक तो तलाक का था, GST का था, गरीब मिडिल क्लास वाला जीना बहुत मुश्किल हो गया, पूरा दाम ज्यादा हो गया है।
अच्छा, ये बताइए कि जब ये असेंबली का चुनाव जैसे पिछले साल हुआ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है
जी,
उस वक्त जब आप वोट डालने जाते हैं और अभी लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं तो कोई अलग तरीके से डालते हैं, अलग सोच होती है आपकी?
नहीं, हम तो सिर्फ कांग्रेस को ही डालते हैं वोट।
अच्छा, आप कांग्रेस को ही डालते हैं?
मैंने एंटनी।
एंटनी, ये बताइए कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा?
पर्सनैलिटी में नहीं है सर, राहुल जी पे ऊपर नहीं, मोदी जी के ऊपर नहीं है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अच्छा है।
तो ये जो मत डालते हैं तो पर्सनालिटी देख के डालते हैं या फिर कैंडिडेट को देख के डालते हैं या
पार्टी को देख के डालते हैं? पार्टी को देख के डालते हैं, बिकॉज वी आर सीन 5 साल से उसको अपॉर्चुनिटी दिया क्योंकि वो बात इतना बात किया कि ये करें वो करेंगे, वो कुछ नहीं किया, बोला सिर्फ बात ही किया।
मेरा नाम विजय,
विजय
अब्राहम। इधर दो टाइम पीसी मनाया, कभी भी इधर आया नहीं, बीजेपी इधर काम नहीं किया, नहीं किया।
और क्षेत्रों में हम गए सुबह से, यहाँ पर हम काफी राउंड लगा चुके हैं, तो लोगों की राय अलग अलग निकल के आ रही है। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको दोबारा जिताने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं।
जुबैर अहमद एक मतदान केंद्र पर मौजूद थे और बता रहे थे वहां की बातें। महाराष्ट्र में 10 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। सीधे कार्यक्रम में मयूरेश के पास चलते हैं जो कि शोलापुर में मौजूद हैं। मयूरेश, ये बताएं कि कैसा रहा आज का मतदान महाराष्ट्र के लिए और कितना महत्वपूर्ण?
बहुत महत्वपूर्ण रहा, और अगर एक बात कहें तो बढ़ा हुआ मतदान, बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज, ये एक अहम बात रही। 10 चुनाव दूसरे चरण में 10 जगह ऐसे थी, विदर्भ की 3 थी, मराठवाड़ा की जो सूखा प्रदेश है वहां की कुछ चीजें थी, और सेंट्रल महाराष्ट्र की शोलापुर थी जहां पे मैं हूं अभी। एक एवरेज बात करें, 5 बजे तक का वोटिंग हुआ, उसमें 58% वोटिंग हुआ है जो पिछले चुनाव के मुताबिक ज्यादा हुआ है, और उसके बाद ये 5 बजे का है, 6 बजे तक वोटिंग था, तो अगले 1 घंटे में 4 से 5% जरूर बढ़ा होगा। तो अगर 60% से ज्यादा होता है तो ये ज्यादा वोटिंग हुआ है, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर वोटिंग बढ़ा है तो वो किसके पक्ष में जाएगा, तो ये एक अहम बात रही। मैं बता दूं आपकी, गर्मी का सीजन है, 40 डिग्री तक टेम्परेचर गया है, फिर भी लोग दिन भर कतार में थे। ईवीएम के कुछ इश्यूज आए लेकिन फिर भी लोग कतार में थे। पॉलिटिकली अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत हैवीवेट जगह इस जगह पे यहाँ पे थी। शोलापुर की बात करें तो सुशील कुमार शिंदे जो बाहर से मुख्यमंत्री रहे हैं, गृहमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर हमेशा इस चुनाव में भी टीका करते आए हैं, वो यहाँ से लड़ रहे थे। उनके सामने थे प्रकाश अंबेडकर जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ यहाँ पे एक वंचित अघाड़ी बनाई है कोअलिशन, और जिसकी बहुत यहाँ पे चर्चा चल रही है, तो वो उनको वहां पे चुनौती देते खड़े हुए थे। दूसरी जगह पे नांदेड़ थी जहाँ पे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण थे, उनकी भी वो भी इस चुनावी माहौल में थे और वो फिर से एमपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक पॉलिटिकली हेवी वेट जो है वो भी इस चुनाव में थे। इस तरह रहा महाराष्ट्र का दूसरे चरण का आज का मतदान।
बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश, इस कार्यक्रम में शोलापुर से शामिल थे। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की 5 लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा की 35 सीटों के लिए वोटरों ने आज वोट डाल दिए। उड़ीसा में दूसरे चरण के मतदान में लगभग 58% वोटिंग दर्ज की गई, लेकिन कुछ शिकायतें भी आई। ईवी मशीन और वीपैट में गड़बड़ी की कुछ शिकायतें दर्ज की गई। उड़ीसा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो गांव की एक महिला के घर पे खाना खाने के लिए पहुंचे हुए थे और उस महिला ने उन्हें चूल्हे पर बना खाना खिलाया था। कांग्रेस ने तंज किया था कि उस महिला का उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कहां था। बाद में पता चला कि उसके घर में वो सिलेंडर है, लेकिन अपने प्रचार शैली से लगातार सुर्खियां बटोर रहे संबित पात्रा से बात करने कुछ सवाल लेकर पहुंचे हमारे सहयोगी संदीप साहू।
संबित जी, ये बताइए कि बाहर के लोग जब देखते हैं तो ज्यादातर फोटो में आपको देखते हैं या वीडियो में देखते हैं, तो ये खाने का दावत आपको लोग देते हैं आप, या फिर आप अपनी ओर से इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं लोगों के साथ लोगों के घर में खाऊं?
देखिए, कोई दावत नहीं है ये। जब मैं इन घरों में जाता हूं, भोजन के लिए जाता हूं, तो मैं इनकी टॉयलेट की अवस्था देखता हूं, पूछता हूं उनको टॉयलेट मिला है कि नहीं। कई घरों को, अधिकांश घरों को यहाँ स्वच्छ मिशन के माध्यम से टॉयलेट मिला है। वहाँ घपला जो हुआ है, घोटाला जो हुआ है, वो भी सामने आता है कि 12,000 रुपये टॉयलेट के होते हैं तो कई जगह 10,000 रुपये जेब में राज्य सरकार के एजेंट्स ने ले लिए हैं, 2,000 ही दिए हैं। तो खाना खाने जाना किसी के घर में वो सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं होती है, वो उस गरीब घर की पूरी कहानी आपको सुनाई जाती है, आप जान पाते हैं। और मुझे लगता है प्रत्येक नेता का ये कर्तव्य होता है कि अगर वो इलेक्शन में उतरता है तो वो अपने क्षेत्रवासियों के दुखों को, कष्टों को जाने, ताकि उसकी समाधान के विषय में वो अग्रसर हो।
जो आपको सोशल मीडिया के जरिए जो फॉलो करता है, ये एक धारणा बनती है कि जैसे मैंने कोई नई जगह आप आ गए हैं, एलिस इन वंडरलैंड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको हो रहा है चुनाव प्रचार के दौरान, ये कितना सच है?
देखिए, एलिस इन वंडरलैंड आपने कहा, आपको झोंपड़ी एलिस इन वंडरलैंड लगता होगा, बीबीसी में बैठ के बहुत दूर लंदन में आपको झोंपड़ी एलिस इन वंडरलैंड लगता होगा। आपको जिस माँ के पास चूल्हा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, वो बीबीसी लंदन वालों को एलिस इन वंडरलैंड लगता होगा। उड़ीसा के गरीब लोगों की हकीकत है। मुझे लगता है लंदन से बाहर निकलकर बीबीसी को गरीबी क्या होती है वो समझने की आवश्यकता है, उसको एलिसन वंडरलैंड आप कैसे बोलते हैं।
लेकिन ये आपके लिए नया तजुर्बा नहीं है गांव में जाना?
नहीं नहीं, वो लंदन वालों के लिए नया तजुर्बा होगा। हम ओपन डिफिकेशन सिस्टम, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से गांव में रहता था तो ओपन डिफिकेशन में जाता था। अभी हमारे घर में 5-6 साल से टॉयलेट बना है, हम झोपड़ी में रहे हैं, पखाल भात हम खाए हैं, मैं लंदन से नहीं आया हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है। इसलिए इसको कृपया करके एलिस इन वंडरलैंड मत बोलिए। चैलेंज करता हूँ आपके लंदन वाले यहाँ आए और ये झोपड़ी में रह के दिखाएं, बाहर टॉयलेट करके दिखाएं, अब जाके मोदी जी ने टॉयलेट दिया है, इसलिए नाउ थिंग्स आर चेंजिंग।
तो आपको लगता है इसके चुनाव परिणाम पे आपका जो कैंपेन स्टाइल है उसका असर पड़ेगा और यही आपको चुनाव जिता देगी?
देखिए, एक असर पड़ चुका है। मैं किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। जिसके विरोध में मैं लड़ रहा हूँ 15 साल से वो अपने क्षेत्र में केवल 3 या 4 बार आए हैं, वो भी हेलीकॉप्टर में आए हैं, ये आप लोगों से पूछ लीजिएगा। मैं 15 दिन उनके साथ रहा हूँ, जो 15 साल में वो नहीं क्या कर पाए हैं 15 दिन में लोगों के बीच रहने की वो प्रक्रिया मैंने करके दिखाई है।
संबित पात्रा जो कि अपनी चुनाव प्रचार शैली से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। दिव्य आर्य, दिन भर में आज क्या क्या कुछ हुआ, चुनावी हलचल क्या है, कहाँ? ये तो वोटिंग की बात हमने कर ली, अब आगे क्या?
मोहनलाल जी, प्रज्ञा ठाकुर आज भी सुर्खियों में बनी रही, उनके खिलाफ आप जानते हैं कि उन्हें भोपाल से टिकट दिया गया है भाजपा के खिलाफ, भाजपा की तरफ से दिग्विजय सिंह के खिलाफ। तो आज उनके खिलाफ तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ये मालेगांव बम धमाके में अभी भी बेल पर बाहर हैं, अभी उसमें वो बरी नहीं हुई हैं। उन्होंने हार्दिक पटेल के केस का हवाला देते हुए कहा है कि इन्हें चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए, जबकि किसी मामले में अगर कोई अभी अभियुक्त है तो वो चुनाव लड़ सकता है, कानून ये कहता है। लेकिन ये भारत में पहला मामला है जब किसी आतंकवादी मामले में, आतंकी हमले के मामले में जो अभियुक्त है उसे टिकट दी गई है। मालेगांव धमाके के एक पीड़ित परिवार ने भी NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत से शिकायत की है और कहा है कि ये उनके लिए बहुत ही दुखद है कि ये सीट उन्हें दी गई है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम, जो लखनऊ सीट से सपा बसपा और RLD गठबंधन की उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो किया और उनके पति शत्रुघ्न सिन्हा
और बड़ी असमंजस की स्थिति रही होगी कि जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो पटना से इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर और वो अपनी वाइफ के साथ है जहां वो SP BSP।
बिल्कुल, अपनी परिवार और पार्टी के बीच समन्वय बनाना शत्रुघ्न सिन्हा के लिए आने वाले समय में चुनौती भरा रहेगा। और एक खबर बताना चाहूंगी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक व्यक्ति ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता JVL नरसिम्हा राव पर जूता फेंक दिया। ये जूता पहले भी इस तरह से इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंका गया है और शायद हर चुनाव में ऐसी एक घटना हो जाती है, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल उस शख्स को अपनी पकड़ में ले लिया और अभी उसकी वजह क्या थी ये स्पष्ट नहीं हुआ, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बता रहे थे।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, और ये हमारे अपने श्रोताओं को बता दें कि बहुत सारी खबरें जो इलेक्शन अपडेट की थी इन्हें आप bbchindi.com के पन्ने पर भी पढ़ने के लिए आ सकते हैं।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
भारत के चुनाव की हलचल से बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर जिले में कुछ हथियारबंद लोगों ने 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों का कहना है कि कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने सड़क पर कुछ बसों को रोका, यात्रियों की पहचान की और शिनाख्त करने के बाद 14 लोगों को बस से उतार कर गोली मार दी। और जानकारी के लिए मैंने संपर्क साधा इस्लामाबाद में BBC संवाददाता शुमैला जाफरी से।
देखिए, आज सुबह मीडिया पे ये खबरें आनी शुरू हुई कि कुछ बसेस थी जो कि पैसेंजर बसेस थी उनको टारगेट किया गया है और बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट ग्वादर का ये इलाका है और ग्वादर वही जगह है जहाँ पे सी पोर्ट है और जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका एक तरह से ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। यहाँ पे एक बहुत ही अहम जो है वो सी पोर्ट है जिसको चाइना के हवाले पाकिस्तान ने किया है। सो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और मिलिटरली डिप्लोमेटिकली ये एक बहुत بھی اہم علاقہ ہے. اس کا ڈسٹرکٹ گوادر کے اندر ایک روڈ جو ہے وہ بنائی گئی جس کو بولتے ہیں مکران کوسٹل ہائی وے, جس نے کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل شہر ہے اسے کنیکٹ کیا تھا بلوچستان کے ان علاقوں کو جو کہ بہت ہی انڈر ڈیولپ تھے, اور گوادر کو کراچی سے کنیکٹ کیا تھا. اسی ہائی وے کے اوپر ہنگول کے قریب ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ان پیسنجر بسز کو ٹارگیٹ کیا گیا, اور ان میں سے 4 سے 5 بسز تھیں. ان میں سے پیسنجرز کو پہلے باہر نکالا گیا اور پھر ان کی آئیڈینٹی کارڈ چیک کیے گئے, اور پھر ان میں سے 14 لوگوں کو ایک طرف لے جا کے اور ان کو گولیاں مار کے ان کو قتل کر دیا گیا.
مطلب جو لوگ آئے انہوں نے کچھ لوگوں کی شناخت کی اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو الگ کر دیا.
بالکل ایسا ہوا, انہوں نے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا اور ان کو ایک طرف لے جا کے قتل کر دیا. شروع میں اس پہ کچھ بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں تھی, لیکن اب یہ بات بالکل کنفرم ہو چکی ہے کہ جو 14 لوگ ہیں ان میں سے 11 جو ہیں وہ ان کی باڈیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, 3 ابھی ان آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. لیکن جو 11 لوگ مارے گئے ہیں ان میں ایک پاکستان ایئر فورس کے کوئی پرسنل تھے, ایک پاکستان کوسٹ گارڈ کے, اور 9 لوگ پاکستان نیوی سے ان کا تعلق تھا.
یعنی کہ پاکستان کے جو سرکشا بل ہیں ان کے یہ لوگ تھے.
بالکل یہ ان کے لوگ تھے, اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ اب کر دی گئی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حملہور تھے انہوں نے بھی سیکیورٹی فورسز کی یونیفارمز پہنے ہوئے تھے, اور انہوں نے بسوں کو روکا تھا, اور پھر یہ حملہ کرنے کے بعد وہ اوران کی پہاڑیاں ہیں قریب اور ان میں غائب ہو گئے. اس کی جو ابھی تک ریسپانسبلٹی کلیم کی ہے وہ ایک الائنس ہے بلوچ جو ملیٹنٹ یا انسرجنٹ جو آرگنائزیشن ہے ان کا, جس کا نام ہے بلوچ راجی اجوئی سنگر, جسے BRAS یا براس کے نام سے بھی جو ہے وہ ٹویٹر پہ اور اس پہ بلایا جا رہا ہے. اس کا ایبریویشن کریٹ کیا گیا ہے, اور یہ گروپ جو ہے یہ کوئی بہت پرانا گروپ نہیں ہے, 3 سے 4 جو ہے یہ آرگنائزیشن کا ایک الائنس ہے جو کہ پچھلے سال نومبر میں سامنے آیا تھا سب سے پہلے. انہوں نے اپنا ڈیکلریشن بھی دیا تھا جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو سی پیک کے ارد گرد کا علاقہ ہے وہ اس کو ٹارگیٹ کرے.
تو گورنمنٹ آف پاکستان کیا کہہ رہی ہے اس پر؟ اب
دیکھیں جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, ویسے تو بہت سارے لوگوں نے کنڈیم کیا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کنڈیم کیا ہے. کنڈیمنیشن کے علاوہ جو ہوم منسٹر ہیں بلوچستان کے ان کا جو ہے وہ انہوں نے بہت سخت میسج دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے بہت سخت کاروائی ہوگی, جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو بالکل بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا اور چھوڑا نہیں جائے گا.
بی بی سی سنواددتا شمیلہ جعفری جانکاری دے رہی تھی کہ پاکستان کے بلوچستان پرانت میں کچھ ہتھیار بند لوگوں نے کس طرح سے 14 لوگوں کی گولی مار کر ہتیا کی. قرض میں ڈوبی جیٹ ایئر ویز نے کل اپنی اڑانیں بند کر دیں. امرتسر سے ممبئی کی آخری فلائٹ کل اڑی تھی. جنتر منتر پر جیٹ ایئر ویز کے کرمچاریوں نے آج پردرشن کیا, ان سے بات کی بی بی سی سنواددتا ونیت کھرے نے.
اس وقت ہم دلی کے جنتر منتر علاقے پر ہیں جہاں پر جیٹ ایئر ویز کے جو امپلائیز ہیں وہ اکٹھا ہیں. کلیئرٹی نہیں ہے, پریشان ہیں لوگ, سب کو کئی مہینے سے سیلریز نہیں ملی ہیں, ان کو ای ایم آئیز دینی ہے, بچوں کی پڑھائی کا ایشو ہے. ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں.
سر ہم لوگوں کا سیلری پچھلے مہینے سے روک دیا گیا ہے. یہاں جتنے بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اپروکس 1/4 جو ہے وہ سرٹیفائنگ اسٹاف ہیں. ہم لوگوں کا مین کہنا یہ ہے کہ پچھلے 12 سالوں میں 21 ایئر لائنس کو بند کر دیا گیا ہے. ہم لوگوں کو مودی سرکار سے بہت زیادہ ہی امید تھی, یہ آئیں گے تو کچھ کریں گے, لیکن آج کے ڈیٹ میں ان کو رہتے ہوئے بھی ہم لوگ ابھی روڈ پہ آ کر کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی روزی روٹی کے لیے, اپنی بھوک مٹانے کے لیے, اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں. جس کمپنی کو میں نے 12 سال دیا سر, وہ کمپنی کا ایک بھی مینجمنٹ کا آدمی آج تک ہم لوگوں کے پاس نہیں آ کر کے یہ بولے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. بنے 20,000 اسٹاف کم سے کم یہاں پر میں ہے, 1,00,000 سے زیادہ فیملی ممبر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور ریلیشن کا تو آپ چھوڑ دیجئے.
ایسا میں نے سوچا بھی دینا, ہم لوگوں نے سوچا, سپنا بھی نہیں سوچا تھا, ایسا سپنا بھی نہیں سوچا تھا کہ آج کے دن ایسا دن دیکھنا پڑے گا.
کن امیدوں کے ساتھ جوائن کیا تھا اور آج کیا حال ہے؟
سر امیدیں تو بہت تھی سر, لیکن اب امید کچھ ہے ہی نہیں. اب تو کمپنی بچے وہی سوچ رہا ہوں کہ مودی سرکار اس پر کچھ دھیان دے, ہمارے مطلب بچوں ہمارے بھوش کے بارے میں کچھ دھیان دیں, پریواروں پر دھیان دیں.
ہمارے پاس مکان نہیں ہے, رینٹ پہ رہتے ہیں, ای ایم آئی دیتے ہیں, اب ہم سے روٹی اور ہمارا کپڑا مت چھینتی ہیں. ہم اس کلاس میں سے ہیں جو دوسروں کو فیڈ کر رہے ہیں, انکم ٹیکس ضرور دیتے ہیں آنیسٹلی, گھر میں نوکر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کا پیٹ پالیں, کیونکہ ہمیں نوکری پہ جانا پڑتا ہے.
जेट एयरवेज के कर्मचारी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे। और अब कार्यक्रम में आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ हैं
इंदु पांडे। मेरा भी नमस्कार।
बहुत दिनों बाद आई हैं आज इंदु पांडे और अपने साथ लाई हैं कई चिट्ठियां और ईमेल्स। कहां से शुरू कर रही हैं?
ईमेल से शुरुआत करते हैं। मदन लाल लंबोरिया भिरानी राजस्थान से लिखते हैं कि रेहान जी की जलियावाला हत्याकांड की विवेचना शानदार रही। वात्सल्य राय, सीटू तिवारी, दिव्या आर्य की रिपोर्ट शानदार रही। वेलकम सारिका जी, इंडिया बोल में भूषण जी ने पार्टी विशेष का पक्ष रखा, अच्छा नहीं लगा। क्या पत्रकारिता भी वो वंशवाद में ढाल रहे हैं?
अच्छा, ये सारिका जी को अलग से वेलकम कह रहे
जी,
हैं
जी, जी, जी।
और इंडिया बोल पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इन्हें शायद भारत भूषण जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की थीं जो आसपास हो रहा है। तो साहब, हम जब भी किसी पत्रकार को या किसी विश्लेषक को बुलाते हैं तो उनको खुली छूट होती है कि वो किस तरह की बात कहें। पत्रकार को ये मानते हैं कि वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, जो स्थिति सामने है उसका वो विश्लेषण करेगा। तो आपको ये बात पसंद नहीं आई, हमने इसका नोट ले लिया है और संज्ञान जिसे कहते हैं वो ले लिया है। अगली बार हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपकी बात भारत भूषण तक पहुंच जाए।
और ये दूसरा ईमेल आया है हमारे पास ठट्ठा सिंध पाकिस्तान से। लिखती हैं शिरीन के।
शिरीन हमारी बहुत पुरानी श्रोता हैं, लगातार ईमेल लिखती हैं और एक फिर उनका ईमेल आया है, बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान से आया है
जी। सीटू तिवारी की रिपोर्ट हो या किसी और की, बीबीसी हिंदी से काफी जानकारी मिलती है। शाहिद भाई के नमस्कार भारत कार्यक्रम में अखबारों की समीक्षा के दौरान कहा गया कि पाकिस्तान में 120 रुपए किलो दूध है, पर महंगा दूध तो पिछले एक साल से बिक रहा है। पर
जो महंगाई की मार यहां है वही पाकिस्तान में भी है।
तो कहती हैं कि हमारे इलाके में अलबत्ता इतना महंगा नहीं है।
चलिए, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि इनके इलाके में दूध इतना महंगा नहीं है, लेकिन वो समाचारों की समीक्षा जो हम सुबह करते हैं उसमें एक खबर कहीं छपी होगी कि 120 रुपए लीटर वहां दूध बिक रहा है, तो हमने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन शिरीन, आप लिखती रहिए और अपने बारे में भी कभी बताइए कि आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं या कुछ और करती हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी।
जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी से, जो कि हमारे नियमित श्रोता है
और नियमित चिट्ठी लिखने वाले भी हैं,
लिखते हैं कि दिनांक 15 अप्रैल को सांधेकालीन सभा में गोरखपुर से बीजेपी का टिकट पाने वाले फिल्म कलाकार रवि किशन जी के साथ श्री पंकज प्रियदर्शी जी की सपाट बातचीत सुनी, इन्हें अच्छी लगी
बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत लंबी ईमेल लिखी है, इसे पूरा पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन जंग बहादुर जी आप बिल्कुल यकीन मानिए, कभी कभी हम आपका पत्र इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको भूल गए, आप हमें कभी मत भूलिएगा।
विभूति कुमार पटना बिहार से लिखते हैं कि समीर आत्मज मिश्र और विनीत खरे सर के समाचार प्रस्तुतीकरण और आवाज के ये दीवाने हैं।
और 2004 से जब मैं मैट्रिक में, मैं देख रहा हूँ सामने रखा हुआ है, मैं मैट्रिक का छात्र था तब से आपके कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता रहा हूँ और सभी के प्रशंसक भी हैं ये। तो विभूति कुमार जी, आपका ये ईमेल हमें मिला और आपकी राय पता चली, उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह से लिखते रहेंगे।
तबारक खान पता कुजरी चंदवा लातेहार झारखंड से, इन्होंने बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी है, बाकी कुछ लिखने के बाद लिखा है कि मैं लोगों को भी बोलता हूँ, दिन भर कोई न्यूज नहीं देखो, बस रात में बीबीसी दिन भर सुन लो।
ये बात तो सही कह रहे हैं। हमारे पास आप जैसे, तबारक खान साहब, आप जैसे बहुत सारे श्रोता हैं जो नौजवान हैं, कॉम्पिटिशन जो एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो बीबीसी रेडियो सुनते हैं और उनको लगता है कि बीबीसी रेडियो से प्रामाणिक जानकारी उनको मिलती है। मैं देख रहा हूँ चिट्ठी आपके हाथ में है, लेकिन आज इंदु जी समय कम है इसलिए हम कुछ श्रोताओं को नाराज तो जरूर करेंगे आज, लेकिन अब समेटना पड़ेगा।
तो पता बता दें?
पता आप बता देंगे?
चलिए मैं पता बता देती हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk पे।
नमस्कार।
तो आपने अपनी भेजी हुई चिट्ठियां सुन ली और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। देश में आज दूसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इनमें तमिलनाडु की सबसे अधिक 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग ने अभी अभी जानकारी दी है कि आज दूसरे चरण में तकरीबन 66% मतदान हुआ है। उत्तर कोरिया ने अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को दोनों देशों के बीच परमाणु बातचीत से हटाने की मांग की है। प्योंगयांग में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि पोम्पियो बेहुदा बातचीत करते हैं और उनकी लापरवाही भरी टिप्पणियां खतरनाक परिस्थितियों तक ले जा सकती हैं। करती हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने राष्ट्रपति चुनावों में बुधवार को खुद की जीत की घोषणा की। उन्होंने अनौपचारिक परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें 55% वोट मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जीत पर कई राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में, और तब तक bbchindi.com का लाइव पन्ना आपके साथ है। आज स्टूडियो संभाला था शाकिर आलम ने, मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।